नमस्कार भारत, तारीख 30 मार्च दिन शुक्रवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। रूस की जवाबी कार्रवाई, 60 अमरीकी राजनयिकों को निकालने का फैसला, अमरीका ने उठाए सवाल।
Russia is responsible for that horrific attack on the British citizen and his daughter. Once again,
केंद्र सरकार के आश्वासन पर अन्ना हजारे ने खत्म किया अनशन।
पीएमओ से अन्ना जी को लेटर दिया है, उनकी जो मांगे हैं, करीब करीब सारी मांगों पर सकारात्मक निर्णय ये केंद्र सरकार ने लिया है।
लेकिन कहा, मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर आंदोलन, और मिलवाएंगे असम के एक रिक्शा चालक से जिन्होंने गरीब छात्रों के लिए बनवाए हैं नौ स्कूल। समाचार पत्रों की सुर्खियों पर भी डालेंगे नजर, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सुनिए सर्वप्रिया सांगवान से। रूस ने अमेरिका के 60 राजनयिकों और अधिकारियों को हटाने का फैसला किया है। साथ ही सेंट पीटर्सबर्ग में बने अमेरिकी दूतावास को भी बंद करने की घोषणा की है। इसी हफ्ते की शुरुआत में अमेरिका ने ब्रिटेन में हुए रूसी जासूस हमले के मामले में रूस के 60 राजनयिकों को निकालने का फैसला किया था। ब्रिटेन भी रूस को हमले का दोषी मानते हुए उसके 23 राजनयिकों को वापस भेज चुका है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि वो इंटरनेशनल केमिकल वेपन्स ऑर्गेनाइजेशन का तत्काल सेशन बुलाएगा ताकि ब्रिटेन के लगाए आरोपों पर चर्चा कर सके। वहीं अमेरिका की प्रवक्ता का कहना है कि रूस की इस प्रतिक्रिया का कोई सही कारण नहीं है। पूर्व रूसी जासूस सर्गेई स्क्रिपल और उनकी बेटी यूलिया 4 मार्च को ब्रिटेन में एक रासायनिक हमले के बाद गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। ब्रिटेन के डॉक्टरों का कहना है कि यूलिया की हालत में सुधार है और वह अब खतरे से बाहर है। बीबीसी को बताया गया कि वह अब होश में हैं और बात कर पा रही हैं, हालांकि सर्गेई स्क्रिपल अब भी गंभीर हालत में हैं। ब्रिटेन ने इस हमले के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन रूस इससे इनकार करता रहा है। रूस की आलोचना है कि उसके अधिकारियों को स्क्रिपल और उनकी बेटी से मिलने नहीं दिया जा रहा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वह $1.5 अरब अमरीका के इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित योजनाओं पर लगाना चाहते हैं, लेकिन इसका कुछ हिस्सा सरकार के फंड से आएगा और ट्रंप ने माना है कि नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले इसके लिए संसद की अनुमति उन्हें नहीं मिल पाएगी। ट्रंप ओहायो में अपना भाषण दे रहे थे, जो कि चुनावों के गणित से एक अहम राज्य है। वहां उन्होंने कहा कि अमरीका का यातायात का सिस्टम अच्छा नहीं है और कई जगहों पर तो पिछड़े देशों जितना बुरा है। उन्होंने जोर दिया कि अमरीकी नागरिकों को बेहतर सड़कें और पुल मिलने चाहिए, इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में ज्यादा निवेश करने की जरूरत है। उनका कहना है कि इससे हजारों नौकरियां भी पैदा होंगी।
In recent years, Americans have watched as Washington spent trillions and trillions of dollars building up.
पिछले कुछ सालों में अमरीकी नागरिक देखते आ रहे हैं कि अमरीका ने अरबों रुपए दूसरे देशों को बनाने में खर्च कर दिए और अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को गर्त में धकेल दिया। दोस्तों, चीजें अब बदल रही हैं। अब वक्त है अपने देश को दोबारा बनाने का, अपने लोगों का ध्यान रखने का और अपने अमरीकी मजदूरों के लिए लड़ने का। डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। नोबेल शांति पुरस्कार की विजेता मलाला यूसुफजई पाकिस्तान लौट आई हैं। 6 साल पहले तालिबानी चरमपंथियों के हमले के बाद ये पहली बार है जब वह पाकिस्तान लौटी हैं। पाकिस्तान की स्थानीय मीडिया ने इस्लामाबाद के बेनजीर भुट्टो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के जो वीडियो प्रसारित किए हैं, उनमें सख्त सुरक्षा के बीच मलाला को उनके माता पिता के साथ देखा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मलाला का यह दौरा 4 दिन तक चलने की उम्मीद है। उम्मीद की जा रही है कि अपने इस पाकिस्तानी दौरे पर वो प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात करेंगी। मलाला अब 20 वर्ष की हो गई हैं और एक मुखर मानवाधिकार कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने अपनी एक मजबूत पहचान बना ली है। उनके पाकिस्तान आने पर वहाँ के लोगों में भी उत्साह है।
ये तो बहुत खुशी है हमें, वो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तानी हीरो हैं, वो अवार्ड याफ्ते हैं, नाम याफ्ते हैं, वो पाकिस्तान की हीरो, वो पाकिस्तान की एक हीरो हैं।
हमारे पाकिस्तान का फख्र है, उसने नोबल इनाम किया है। जो पूरा अटैक हुआ है वो ज्यादा है, सरासर ज्यादा है, लेकिन एक बात यह भी है कि सिर्फ मलाला ही पाकिस्तान की खतून नहीं है, वो एक ही खतून नहीं है, और भी लड़कियाँ उसकी तरह हैं। जिस तरह उसकी देखभाल की जाती है, उस तरह सबकी की करनी चाहिए। और उसके साथ ज्यादा हुई है मानते हैं हम, लेकिन मलाला एक ही नहीं है, और भी बहुत हैं।
आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की संभावित मुलाकात को लेकर अभी अटकलें हैं, लेकिन इस बीच दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के मिलने की तारीख पक्की हो गई है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन अगले महीने 27 अप्रैल को किम जोंग उन से पनमुनजोम में मुलाकात करेंगे। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। समाज सेवी अन्ना हजारे ने बीते हफ्ते दिल्ली में अपना अनशन शुरू किया था। इस बार भले ही उनके आंदोलन की ज्यादा चर्चा ना हुई हो, लेकिन अनशन ने अन्ना के शरीर पर असर दिखाना शुरू कर दिया था। 6 दिन में करीब 5.5 किलोग्राम वजन घट गया था। अन्ना का यह आंदोलन कल खत्म हो गया। उन्हें क्या आश्वासन मिला और उन्होंने क्या कहा, ये सब कुछ आगे बताएंगे। नमस्कार भारत की शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से करते हैं। रूस ने अमेरिका के 60 राजनयिकों को निकालने का फैसला किया है। इसी हफ्ते अमेरिका ने भी रूस के 60 राजनयिकों को घर लौटने का फरमान सुनाया था। रूस की कार्रवाई उसी के जवाब में है। ये तमाम कार्रवाइयां ब्रिटेन में रूस के एक पूर्व जासूस और उनकी बेटी को जहर देने के बाद शुरू हुई। अमेरिका ने रूस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। पूरी रिपोर्ट सर्वप्रिया सांगवान से।
रूसी जासूस पर रासायनिक हमले के लगभग 3 हफ्ते बाद खबर है कि हमले में गंभीर रूप से बीमार हुई यूलिया स्क्रिपल अब खतरे से बाहर हैं। उन्हें और रूसी जासूस रहे उनके पिता सर्गेई स्क्रिपल पर ब्रिटेन के सल्सबरी में नर्व एजेंट से हमला किया गया था। जहां एक तरफ यूलिया की हालत सुधर रही है, वहीं रूस और अमरीका के बीच के हालात बदतर हो रहे हैं। रूस ने अमेरिका के 60 राजनयिकों और अधिकारियों को निकालने का फैसला किया है। इन लोगों को रूस छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। सेंट पीटर्सबर्ग स्थित अमेरिकी दूतावास को भी बंद किया जाएगा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने मीडिया को इस मामले में जानकारी दी।
Мы параллельно хотим не просто реагировать на абсолютно неприемлемые
अमेरिका और ब्रिटेन के दबाव की वजह से हमारे खिलाफ लिए गए फैसलों का हम जवाब देंगे जो कि स्क्रिपल मामले की वजह से लिए जा रहे हैं। स्क्रिपल की बात करें तो इस बीच ब्रिटेन ने हमें यूलिया की हालत के बारे में जानकारी दी है। जैसा कि उन्होंने लिखा है कि उसकी हालत में सुधार हो रहा है और इसलिए हम एक बार फिर मांग कर रहे हैं कि हमें यूलिया से एक रूसी नागरिक के तौर पर मिलने दिया जाए और मुझे उम्मीद है कि ब्रिटेन काउंसलर कन्वेंशन और वियना कन्वेंशन के तहत अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के शब्द। दरअसल ब्रिटेन का आरोप है कि पूर्व रूसी जासूस सर्गेई स्क्रिपल और उनकी बेटी यूलिया पर रूस ने हमला करवाया है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने बताया था कि उन पर नोविचोक नाम के नर्व एजेंट से हमला किया गया था, जिसे रूस में बनाया गया था। हालांकि रूस इस आरोप से इनकार करता रहा है, लेकिन ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा कर दी, जिसमें रूस के 23 राजनयिकों को हटाना भी शामिल है। ब्रिटेन के साथ एकजुटता दिखाते हुए 20 से ज्यादा देश रूस के राजनयिकों को निकाल चुके हैं। अमरीका भी उनमें शामिल है। अमरीका ने इसी हफ्ते रूस के 60 राजनयिकों को निकालने का आदेश दिया था और सिएटल में दूतावास बंद कर दिया था। माना जा रहा है कि इतिहास में पहली बार है कि रूस के खिलाफ देशों ने ऐसा साझा कदम उठाया है। अब जब रूस ने भी प्रतिक्रिया में राजनयिकों को निकालना शुरू किया है, तो अमेरिका की प्रवक्ता हीदर नॉरेट का कहना है कि रूस के पास ऐसा करने का कोई सही कारण नहीं है।
The United States, in concert with many other countries, made the decision to kick out Russian spies.
अमेरिका ने दूसरे देशों के साथ मिलकर रूसी जासूसों को निकाल फेंकने का फैसला किया है। हम इसे अदले का बदला नहीं मानते। रूस एक ब्रिटिश नागरिक और उनकी बेटी पर हमले का जिम्मेदार है। एक बार फिर उन्होंने रासायनिक हथियार संधि को तोड़ा है। उन्होंने एक प्रतिबंधित रसायन नोविचोक का इस्तेमाल किया है। हम इसे बहुत गंभीरता से लेते हैं। रूस को पीड़ित की तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए। जो पीड़ित हैं वो 2 लोग इस वक्त ब्रिटेन के अस्पताल में हैं। प्रवक्ता हीदर नॉरेट के शब्द। देशों के बीच बढ़ती तनातनी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस का कहना है कि ये हालात शीत युद्ध की याद दिलाते हैं। साथ ही उन्होंने चिंता जाहिर की कि अमेरिका और रूस के बीच तनाव कम करने के रास्ते बहुत कम हैं।
क्या वाकई शीत युद्ध के दौर की वापसी हो रही है? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस मौजूदा तनाव को देखते हुए यही सोच रहे हैं। रिपोर्ट सुना रही थी सर्वप्रिया सांगवान।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम, बीबीसी हिंदी।
अगली खबर भारत से और बात अन्ना हजारे की। जैसा हमने शुरुआत में बताया, अन्ना हजारे लोकायुक्त की नियुक्ति और किसानों के मुद्दों को लेकर अनशन कर रहे थे। इसकी शुरुआत 23 मार्च को हुई थी। कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आश्वासनों के साथ अन्ना से मिलने पहुंचे और उसके बाद अन्ना हजारे ने अपना अनशन खत्म कर दिया। बीबीसी संवाददाता नवीन नेगी की रिपोर्ट।
भारत माता की जय के ये जयकारे अन्ना हजारे के मंच से बीती शाम को लग रहे थे। इन जयकारों के बीच अन्ना ने दिल्ली के रामलीला मैदान में पिछले 6 दिनों से चला आ रहा अपना अनशन समाप्त कर दिया। अन्ना ने कहा कि सरकार की ओर से केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति का भरोसा मिलने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया। सुनिए अन्ना ने अपना अनशन तोड़ने के बाद क्या कहा।
जो अनशन जो शुरू किया था उसमें 3 मुद्दे थे। एक था किसानों के जो फसल पर खर्चा होता है, खर्चा के आधार पर 1.5 गुना किसानों को दाम मिलना चाहिए। अभी आपने सुना है वो निर्णय अभी सरकार ने लिया है। दूसरा है कि लोकपाल लोकायुक्त, उसके बारे में भी आपने सुना है कि हम जल्द से जल्दी ये निर्णय लेंगे।
अन्ना हजारे ने सरकार को उनकी मांगें पूरी करने के लिए अगस्त तक का वक्त दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो सितंबर में वे दोबारा अनशन शुरू कर देंगे। अनशन की वजह से 80 वर्षीय अन्ना के वजन में 5.5 किलोग्राम तक की कमी आई है। उनका ब्लड प्रेशर भी उच्च स्तर पर बताया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पानी पिलाकर अन्ना का अनशन तोड़वाया। इस दौरान केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मंच पर मौजूद रहे। देवेंद्र फडणवीस ने अन्ना का अनशन तोड़वाने के बाद मीडिया से कहा,
हमने पीएमओ से अन्ना जी को लेटर दिया है, उनकी जो मांगे हैं करीब करीब सारी मांगों पर सकारात्मक निर्णय ये केंद्र सरकार ने लिया है। विशेष रूप से कृषि मूल्य आयोग के बारे में क्या क्या सुधार किए गए हैं ये हमने उनको बताया, और साथ ही उनकी जो मांग थी और उसको स्वायत्तता दी जाए उस पर एक समिति तैयार की गई है जो इसके बारे में निर्णय करेगी। लागत मूल्य पे 50% मुनाफा मिले तो केंद्र सरकार ने माना है। साथ ही में जो चुनाव सुधार के बारे में अन्ना जी ने बात कही थी वो इलेक्शन कमीशन के डोमेन में आती है, उसके बारे में भी सारी बात हुई है। और उसके साथ साथ बाकी भी जो चीजें उन्होंने कही थी लोकपाल लोकायुक्त उसके बारे में भी बातचीत।
इससे पहले साल 2011 में भी अन्ना लोकपाल की मांग लेकर ऐसी ही भूख हड़ताल पर बैठे थे। इसके बाद दिल्ली में लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 पारित किया गया, लेकिन केंद्र में आज भी लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई है। आखिर तब की सरकार और इस बार की सरकार के आश्वासन में क्या अंतर है, इस बारे में अन्ना के निजी सहायक संजय पठाड़े ने बीबीसी को बताया।
इसमें एक फर्क ऐसा है कि आज है कि आज कोई कानून पारित करना नहीं है, कानून तो बन चुका है। अन्ना जी की प्रमुख मांग है कि जो कानून संसद में बन चुका है उस कानून पर अमल होना चाहिए और कानून के तहत लोकपाल की नियुक्ति होनी चाहिए, जो मोदी सरकार नहीं कर रही है। और अभी उन्होंने ये आश्वासित किया है कि हम अभी लोकपाल की नियुक्ति जल्द से जल्द करेंगे।
इस बार धरने पर बैठने से पहले अन्ना ने मोदी सरकार के प्रति गहरी नाराजगी जताई थी और कहा था कि उन्होंने बीते 4 सालों में केंद्र सरकार को 43 चिट्ठियां लिखी जिनमें से उन्हें एक का भी जवाब नहीं मिला। अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि केंद्र की मोदी सरकार अन्ना से किए अपने वायदे पूरे करती है या अन्ना को एक बार फिर रामलीला मैदान का रुख करना पड़ता है। नवीन नेगी, बीबीसी, नई दिल्ली।
और अब बात कर्नाटक की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह आज कर्नाटक के पुराने मैसूर क्षेत्र का दौरा करेंगे। उनका सुतूर मठ जाने का भी कार्यक्रम है। राज्य में 12 मई को विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके पहले अमित शाह के मठों के इस दौरे के क्या मायने हैं, बता रहे हैं इमरान कुरैशी।
ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह राहुल गांधी का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। इतवार को राहुल गांधी ने मैसूर और आसपास के जिलों में अभियान चलाया और अमित शाह आज वहीं पहुंच रहे हैं। पिछले महीने राहुल गांधी हैदराबाद कर्नाटका इलाकों में गए तो थोड़े दिन बाद अमित शाह ने उनका अभियान चलाया। फिर बॉम्बे कर्नाटका तटीय इलाके और केंद्र कर्नाटका के जिलों में भी अमित शाह राहुल गांधी का पीछा करते आए हैं। तो इसका मतलब क्या है? कर्नाटका बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर वमन आचार्य ने कहा,
हम झाड़ू लेके जा रहे हैं, जो आप गंदा करके जाते हैं वो हम साफ करेंगे। और अमित शाह जी का प्राइमरली प्रोग्राम ये संगठनात्मक और स्ट्रेटेजिक रहता है। ये सिर्फ बाहर एक दो स्टेटमेंट दे के आने का प्रोग्राम हमारा नहीं है। हम दोनों करेंगे। इसमें जो स्ट्रेटेजी से पावर सेंटर्स है उनसे मिलना, उनको हमारे साथ लेना एक कोशिश होगा। दूसरा, संगठन का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाने का भी अमित शाह जी कोशिश कर रहे हैं।
अमित शाह नंजनगुड़ के मशहूर मंदिर जाएंगे, दलित नेताओं से मिलेंगे, बूथ कमेटी के समावेशों में भाग लेंगे और रेशम उत्पादकों से मिलेंगे। लेकिन उनका सबसे अहम कार्यक्रम होगा जब वो सुत्तूर मठ के जगतगुरु श्री शिवरात्रि देशिकेंद्र महास्वामी जी से मिलेंगे। अमित शाह की कोशिश होगी कि जगतगुरु लिंगायत समुदाय को अल्पसंख्यक दर्जा देने पर अपना रुख साफ करें। अमित शाह अभी तक ये कहते आ रहे हैं कि सिद्धरामैया सरकार ने लिंगायत समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा हिंदू समाज का विभाजन करने के लिए दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो निर्णय बीएस येडियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद नहीं हासिल करने के मकसद से किया है। तो सुत्तूर मठ स्वामी जी का क्या रुख होगा? हमने ये सवाल लिंगायत समाज के जानकार प्रीति नागराज से पूछा। उन्होंने कहा,
ये इतना अफेक्ट नहीं होगा सुत्तूर मठ जाने से, क्योंकि सुत्तूर मठ जो है वो पहले से ही इस इशू से काफी दूर रह चुका है। सुत्तूर मठ इस पूरे इशू से थोड़ा बाहर रहेंगे और जैसे मेजॉरिटी डिसीशन लेंगे, जैसे वो कौम के लोग जो भी डिसीशन लेंगे, बाकी के स्वामी जी जो भी डिसीशन लेंगे, सुत्तूर मठ शायद उसी के हिसाब से जाएगी। तो अमित शाह जी का जो भेंट है, मैं सोचती हूँ ये बदकर्टसी कॉल होगी।
सुत्तूर मठ स्वामी जी का रुख जानना अमित शाह के लिए इसलिए महत्व रखता है क्योंकि कुछ ही दिन पहले चित्रदुर्गा के एक प्रमुख लिंगायत स्वामी जी ने उनसे कह दिया कि वो सिद्धरामैया के निर्णय का समर्थन करते हैं। श्री मुर्ग राजेंद्र मठ के जगतगुरु डॉक्टर शिवमूर्ति मुर्गा शनरारू ने दरअसल अमित शाह के हाथ ज्ञापन भी दे दिया कि केंद्र सरकार को सिद्धरामैया सरकार के निर्णय को मंजूरी दे देना चाहिए। दरअसल अमित शाह ये आकलन करना चाह रहे हैं कि लिंगायत मठों का क्या रुख होगा इस निर्णय पर, क्योंकि लिंगायत समुदाय बीजेपी का वोट बैंक है जिसको सिद्धरामैया तोड़ना चाह रहे हैं। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
राजनीतिक पारा उत्तर प्रदेश में भी चढ़ा हुआ है। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का नाम सरकारी तौर पर बदलने के फैसले का विपक्षी दल कड़ा विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। सुनिए समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक की सलाह पर राज्य सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर अमल तो कर लिया, लेकिन भीमराव आम्बेडकर का जो पूरा नाम उसने ढूंढ कर निकाला वो अब उस पर भारी पड़ता दिख रहा है। राज्यपाल राम नाईक ने तो सिर्फ बाबा साहब के नाम की वर्तनी और उच्चारण को सही करने की सलाह दी थी, लेकिन सरकार ने संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज उनके हस्ताक्षर से उनका पूरा नाम भीमराव रामजी आम्बेडकर ढूंढकर निकाल लिया और फिर सरकारी तौर पर यही नाम इस्तेमाल करने का शासनादेश जारी कर दिया। बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती ने प्रतिक्रिया देने में पूरा एक दिन भले ही लगा दिया, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया बेहद गुस्से से भरी थी।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी सभी समाज तबके व सभी उम्र के लोगों के लिए बाबा साहब हैं, वे परम पूज्य भी हैं। इसके अलावा जिस प्रकार गांधी जी को कोई उनके पूरे नाम मोहनदास करमचंद गांधी से संबोधित नहीं करता, तथा स्वयं बीजेपी वाले क्या सरकारी विज्ञापनों आदि में श्री नरेंद्र मोदी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी लिखते हैं, मैं समझती हूँ नहीं, तो फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर ही ये स्वार्थ की राजनीति क्यों हो रही है?
दरअसल महाराष्ट्र में नाम के साथ पिता का भी नाम जोड़ने की परंपरा रही है और इसी वजह से कुछ जगहों पर भीमराव अंबेडकर के नाम के साथ उनके पिता का नाम जुड़ा रहता है, लेकिन यह परंपरा ही है, अनिवार्यता नहीं। राजनीतिक हलकों में चर्चा ये है कि इसके जरिए दलितों को ये संदेश दिया जाए कि उनके आराध्य बाबा साहब के पिता का नाम भी हिंदुत्व परंपरा से जुड़ा है। विपक्षी दलों ने सरकार के इस कदम को जहां बेतुका और राजनीतिक लाभ लेने वाला बताया है, वहीं अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर से भी विरोध के स्वर काफी मुखर हो रहे हैं। बीजेपी सांसद उदित राज तो सीधे तौर पर इसे बेमतलब का फैसला करार देते हैं।
मैं तो नहीं समझ सकता हूं कि कोई वजह है, हम लोग तो भीमराव अंबेडकर ही जानते थे। जो व्यक्ति अब दुनिया में रहा ही नहीं, उसके नाम में परिवर्तन करना, बिना वजह विवाद को पैदा कर देना, मुझे तो नहीं लगता कि ये उचित है, अनावश्यक है। अब शरद पवार जी क्यों नहीं लिखते भाई, फडणवीस क्यों नहीं लिखते भाई, कंपलसरी तो नहीं है। क्या फायदा है, क्या मिलेगा, कोई फायदा है क्या? अरे भाई, मरने के बाद किसी के आदमी के बारे में नाम बदलना क्या मतलब होता है?
वहीं बीएसपी नेता मायावती राज्य की बीजेपी सरकार के इस फैसले के पीछे ये वजह बताती हैं।
बीजेपी एंड कंपनी के लोगों की असली समस्या ये है कि सर्व समाज के लिए ऐसे महापुरुष व परम पूज्य नाम आरएसएस जनसंघ व बीजेपी एंड कंपनी के लोग इतने वर्षों में आज तक भी नहीं पैदा कर पाए।
उधर सोशल मीडिया पर भी इस बात की काफी चर्चा है कि पूरा नाम लिखने की परंपरा और बोलचाल में किसी का नाम कुछ और होना दोनों अलग बातें हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग मायावती की तरह महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी और कुछ अन्य नेताओं के पूरे नाम सरकारी तौर पर न लिए जाने का जिक्र कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का असली नाम सरकारी दस्तावेज में क्यों नहीं है, ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
उधर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस जे चेमलेश्वर ने बीते हफ्ते चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने चीफ जस्टिस से न्यायपालिका में सरकार के दखल के खिलाफ कदम उठाने की मांग की। उन्होंने पत्र में कर्नाटक के एक जज को हाईकोर्ट जज के तौर पर तरक्की देने की सिफारिश में केंद्र के दखल का मुद्दा उठाया है। इस पूरे मामले को लेकर BBC संवाददाता मानसी दास ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण से बात की।
ये बहुत गंभीर है, खासकर इसलिए क्योंकि ये हर रोज हर जगह हो रहा है। एक तरफ तो जो अपॉइंटमेंट रेकमेंड किए जा रहे हैं कोलिजियम के द्वारा, वो अपॉइंट नहीं करे जा रहे जज, उनको रोक के रखा जाता है। और दूसरी बात, आज तो यही सिचुएशन आ गई है कि जजों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। न्यायपालिका का काम ये है कि सरकार के ऊपर निगरानी रखना, जनता के संवैधानिक हक और मौलिक अधिकार की रक्षा करना सरकार के खिलाफ, तो इसलिए ये बहुत गंभीर मामला है। और इस वजह से उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है कि भाई कर्नाटक का एक जज जिसका रिकमेंडेशन बार बार कोलिजियम ने किया, उसको अपॉइंट नहीं कर रहे हैं और अब सीधा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखकर उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू करा दी थी, जबकि इंक्वायरी पहले कोलिजियम करवा चुका है और पाया कि बिल्कुल बेबुनियाद आरोप थे उनके ऊपर।
आम आदमी आंख बंद करके जुडिशियरी पर भरोसा करता है, क्या उसका भरोसा इस घटना के बाद हिल जाएगा?
देखिए, आम आदमी का भरोसा तो वैसे ही हिला हुआ है, उसको सुधारने की जरूरत है और सुधरेगा तब जब रवैया ठीक होगा। जब सरकार से अच्छे संबंध रखने के बजाय सरकार के ऊपर निगरानी, कड़क निगरानी रखने लगेगा।
ये थे वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण। और वक्त है दिल्ली से छपे अखबारों की सुर्खियों पर नजर डालने का। सरप्रिया तैयार है अखबारों के साथ। जी सरप्रिया,
फिलहाल जिस एक खबर ने सभी को चौंका रखा है वो है CBSE का पेपर लीक मामला। इससे 16 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं। सभी अखबारों के पहले पन्ने पर इससे संबंधित खबर है। और इसके खिलाफ देशभर में कई जगह छात्रों ने ही प्रदर्शन किए। जंतर मंतर पर प्रदर्शन की एक तस्वीर टाइम्स ऑफ इंडिया और जनसत्ता में छपी है, जिसमें छात्र प्लेकार्ड लेकर खड़े हैं जिस पर लिखा है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में दो चीज़ें नहीं हैं, एजुकेशन एंड सिस्टम। और मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि वो दोबारा इन परीक्षाओं के लिए जाने की तारीख का जल्द ऐलान करेंगे। फिलहाल पुलिस भी काफी मुस्तैद हो गई है, छापेमारी कर रही है, लेकिन
ऐसा बताया जा रहा है।
जी, ये अखबारों में ऐसा लिखा गया है।
और जी, इस खबर को हमने कल शाम के अपने कार्यक्रम दिन भर में विस्तार से समेटा था।
जी, और जो दूसरी खबर है वो है, जो अभी तक तो हम PNB घोटाले का मामला सुर्खियों में देखते आ रहे थे, अब ICICI बैंक का घोटाला सामने आ गया है। देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक माना जाता है ICICI। इस बैंक की CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर चंदा कोचर पर आरोप है कि उन्होंने अपने पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन ग्रुप को कर्ज देने में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। वीडियोकॉन ने कर्ज नहीं चुकाया और 3,000 करोड़ रुपए की जो राशि थी वो NPA में बदल गई। और इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक RBI ने ICICI बैंक पर भारी जुर्माना लगाया है क्योंकि उसने RBI की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया और ये जुर्माना लगभग 59 करोड़ का है। और एक और जो अभी हम थोड़ी देर पहले समित्रा आत्मज की एक रिपोर्ट सुन रहे थे उसी से संबंधित,
भीमराव अंबेडकर का नाम बदल,
जी बिल्कुल, उसी से संबंधित एक दिलचस्प खबर दैनिक जागरण ने छापी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम के मध्य रामजी जोड़े जाने के उत्तर प्रदेश सरकार के फरमान से विपक्ष भले ही नाखुश हो, लेकिन 1991 में जब राम मंदिर आंदोलन चरम पर था तब केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार ने अंबेडकर के नाम के साथ रामजी शब्द जोड़ दिया था। उस समय जो भारत सरकार ने डाक टिकट जारी की थी उसमें उनका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर लिखा गया था और योगी सरकार ने ही ये डाक टिकट मीडिया के सामने पेश कर दी है
अपनी सफाई में। जी, बहुत शुक्रिया सरप्रिया। आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं असम के अहमद अली की। अहमद अली करीमगंज जिले के खिलोरबंद गांव में रहते हैं। गुजारे के लिए वो रिक्शा चलाते हैं, लेकिन उनकी चर्चा एक अलग खूबी के लिए है। अहमद अली ने गाँव के गरीब बच्चों के लिए 9 स्कूल बनवाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में भी उनका जिक्र किया था। सुनिए पीएम ने क्या कहा था।
जब मुझे आपके पत्रों में पढ़ने को मिलता है कि कैसे असम के करीमगंज के एक रिक्शा चालक अहमद अली ने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर गरीब बच्चों के लिए 9 स्कूल बनवाए हैं, तब इस देश की अदम्य इच्छा शक्ति के दर्शन होते हैं। यह है न्यू इंडिया की ताकत।
ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द। हमारे साथी दिलीप शर्मा अहमद अली से मुलाकात करने के लिए करीमगंज जिले के उनके गांव में पहुंचे। दिलीप ने उनके स्कूलों को भी देखा। सुनिए उनकी ये रिपोर्ट।
ये आवाज उन गरीब बच्चों की है जो असम के एक छोटे से गांव खिलोरबंद की स्कूल में अपने सुनहरे भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। बुनियादी सुविधा से पिछड़े इस गांव तक पहुंचने के लिए न कोई पक्की सड़क है और न ही यहां कोई अन्य सुविधा नजर आती है, लेकिन इस गांव की चर्चा अब दूर दूर तक हो रही है। दरअसल 7000 आबादी वाले इस गाँव में 9 ऐसे स्कूल है जहाँ तकरीबन 1400 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन स्कूलों को बिना किसी सरकारी मदद के रिक्शा चलाने वाले अहमद अली ने बनवाया है। इन स्कूलों में हिंदू मुसलमान दोनों ही धर्म के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात रेडियो कार्यक्रम में की गई प्रशंसा से खुश 82 साल के अहमद अली ने कहा,
मुझे बेहद खुशी है कि मेरे जैसे एक साधारण रिक्शा चलाने वाले का नाम प्रधानमंत्री ने लिया और मेरे काम की जानकारी उन तक पहुंची। ये एक तरह से मेरे लिए स्वर्ग में पहुंचने जैसा है। हम बेहद पिछड़े इलाके के लोग हैं और गरीब हैं। मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री हमारे गरीब बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए यहाँ एक कॉलेज बनवाने में मदद करे। ये थे अहमद अली के शब्द। ग्रामीण अंदरूनी इलाकों में गरीबी स्कूल की अनुपलब्धता के बीच अहमद अली ने 1978 में अपने गांव खिलोरबंद में पहला माध्यमिक विद्यालय बनवाया था। बाद में उन्होंने अपनी 31 बीघा जमीन दान कर धीरे धीरे यहां 9 स्कूल बनवा दिए। इनमें 3 प्राथमिक विद्यालय हैं, 5 माध्यमिक विद्यालय हैं और 1 हाई स्कूल है। अहमद अली खुद कभी स्कूल नहीं गए। मैं कभी स्कूल नहीं गया, इसलिए परिवार का गुजारा करने के लिए कभी मजदूरी की तो कभी खेतों में काम किया। आगे जब कुछ काम नहीं मिला तो मैं रिक्शा चलाने करीमगंज शहर चला गया। वहाँ 20 साल से अधिक समय मैंने रिक्शा चलाया। जब मैं करीमगंज में बच्चों को स्कूल जाते देखता था तो मेरे गाँव की याद आती थी। शिक्षा के कमी के कारण हमारे गाँव का माहौल अच्छा नहीं था। मुझे एहसास हो गया था कि निरक्षर सभी समस्याओं का मूल कारण है। इन स्कूलों के कारण आज खिलोरबंद मधुरबंद जैसे गांवों का माहौल बदला है। अली अहमद के इस प्रयास की प्रशंसा करते हुए स्थानीय शिक्षक अमीनुल हक चौधरी कहते हैं,
ये 120 इलाका में 9 स्कूल किया था, सब अहमद अली जो है उन्होंने गढ़ा था। उसका अवदान से आज ये स्कूल हुआ, ये इलाका का जितना बच्चा है सब पढ़ रहा है, शिक्षित हो रहा है, इससे पहले तो ये नहीं था।
इस बीच प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी जिले के पुलिस अधीक्षक गौरव उपाध्याय को फोन कर अहमद अली के काम की जानकारी मांगी है, जबकि स्थानीय विधायक कृष्णेंदु पाल ने अहमद अली के ऐसे प्रयास को देखते हुए उनके स्कूल के लिए 11 लाख रुपए की सरकारी सहायता दी है। अहमद अली का आखिरी सपना है कि उनके जिंदा रहते गाँव में एक कॉलेज बन जाए, क्योंकि गांव में 10वीं तक ही स्कूल है और कोई भी अभिभावक अपनी लड़कियों को 10वीं पास करने के बाद गांव से बाहर भेजना नहीं चाहते, लिहाजा लड़कियों को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ रही है। दिलीप कुमार शर्मा, BBC खिलोरबंद।
और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर सर्वप्रिया सांगवान से।
रूस ने अमेरिका के 60 राजनयिकों और अधिकारियों को हटाने का फैसला किया है। साथ ही सेंट पीटर्सबर्ग में बने अमेरिकी दूतावास को भी बंद करने की घोषणा की है। पूर्व रूसी जासूस सर्गेई स्क्रिपल और उनकी बेटी यूलिया 4 मार्च को ब्रिटेन में एक रासायनिक हमले के बाद गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। ब्रिटेन के डॉक्टरों का कहना है कि यूलिया की हालत में सुधार है और वह अब खतरे से बाहर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वह $1.5 अरब अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित योजनाओं पर लगाना चाहते हैं, लेकिन इसका कुछ हिस्सा सरकार के फंड से आएगा और ट्रंप ने माना है कि नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव से पहले इसके लिए संसद की अनुमति उन्हें नहीं मिल पाएगी। BBC समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो की कमान थी राजेश चौहान के हाथ। फेसबुक प्रसारण में मदद की भूमिका राय ने। आपसे अगली मुलाकात दिन भर में शाम के वक्त 7:30 बजे होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है BBCHindi.com का पन्ना। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।